ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कर चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को मनमाफिक रिपोर्ट देने के आरोप में सीबीआई ने 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 11 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लोगों को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। और भारी बारिश से राज्य के कुछ जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। बलरामपुर जिले में बीते 2 दिनों में नदी में बहने से 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कर की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज मंत्रालय में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी बिल, दोहरी बही खाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ है, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी और मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को रिश्वत लेकर उनके मनमाफिक रिपोर्ट देने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 3 चिकित्सकों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नवा रायपुर के श्री रावतपुरा सरकार चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के 3 अधिकारियों और अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में नामित मूल्यांकनकर्ताओं ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को अनुकूल रिपोर्ट दी। इसकी सूचना प्राप्त होने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम का लेन देन करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने सिलसिले में छत्तीसगढ़ सहित कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कल जिस रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव ईएलआई योजना को मंजूरी दी है, उसका राज्य में युवाओं के साथ ही उद्योग और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। दुर्ग जिले के जाने माने शिक्षाविद चिरंजीव जैन ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ये योजना सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
इस योजना का लाभ 2 स्तर पर है। पहला स्तर तो है कि जो रोजगार पाने वाले हैं उन्हें नियमित एक वेतन के रूप में 15,000 रुपए की राशि मिलेगी और साथ ही साथ जो नियोक्ता है जो नौकरी देने वाले हैं वो भी लाभान्वित होंगे। तो 2 स्तर पर लाभ होने के चलते ये रोजगार की योजना एक बहुत शानदार योजना है जो आने वाले समय में जो युवा है उनको बहुत हद तक लाभ देगी।
वहीं शिक्षाविद अवनीश कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना दोहरा लाभ प्रदान करने वाली योजना साबित हो सकती है।
ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 फायदे नजर आ रहे हैं कि एम्प्लॉई को हम कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई हो रहे हैं और एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव दे रहे हैं अगर वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एम्प्लॉई बचत करना सीखेगा क्योंकि हम उसको बचत में इंसेंटिव को दे रहे हैं। इसमें एडवांटेज ये भी हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 3रे और 4थे साल में भी इंसेंटिव एम्प्लॉयर को दे रहे हैं। तो सरकार का एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है उस ओर कि जहां वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसी स्कीम को 4 साल के लिए लागू करने जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को गति देना और पहली बार नौकरी करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को नियमित रूप से खाद की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएपी के स्थान पर एनपीके खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि कोविड के टीकों और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के 2 प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन किया है। इसके तहत अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और क्रिप्टो करेंसी जैसे निवेश पर रोक लागू रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोरबा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण हसदेव नदी का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं ढोड़ी पारा स्थित भैंस खटाल बस्ती में बीती रात एक घर की छत ढह गई, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के कारण कई निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे जांजगीर संवाददाता राजकुमार साहू।
जांजगीर चांपा जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी भी शुरू कर दी है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि जिले में अभी मौसम इसी तरह से 2-3 दिन और बना रहेगा। राजकुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, जांजगीर।
वहीं सक्ती जिले में भी पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश होने और आंधी तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है।
सक्ती जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आंधी तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं शहरी इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। राहत की बात है कि नदी नाले फिलहाल खतरे के निशान से नीचे हैं। वहीं सक्ती से लगे रायगढ़ जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सक्ती जिले से मैं प्रकाश साहू।
बलरामपुर जिले में भी लगातार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। आज गेउर नदी को पार करते समय एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कल राजपुर क्षेत्र की गागर नदी में फंसे 3 पहाड़ी कोरवा बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। इससे पहले शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित एक नाले को पार करते समय माँ बेटे बह गए थे, जिनके शव कल बरामद कर लिए गए थे। इस बीच मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है।
प्रदेश में सभी जिलों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। फिर भी जो भारी बारिश का क्षेत्र है, मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले संभावित हैं, जिसमें सरगुजा संभाग के जिले और उससे लगे जिले सबसे ज्यादा संभावित हैं। उसके अतिरिक्त बस्तर संभाग के दक्षिणी जिले, जिसमें बीजापुर, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर है, इसमें भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश के कारण किरंदुल कोरापुट रेल लाइन पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ने जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस और किरंदुल विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के परिचालन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। रेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी रेल मार्ग की मरम्मत कर यातायात को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज नवा रायपुर स्थित अपने निवास से मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान का शुभारंभ किया। श्रीमती राजवाड़े ने मुनगा के पौधे का रोपण कर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की, साथ ही प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि ये बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है। 11 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने बताया कि इन आरोपियों पर करीब 1,70,00,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने का आरोप है और इन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है।
ये जो मामला है म्यूल अकाउंट रिलेटेड है, जैसे एफआईआर रजिस्टर किए हैं उसमें कई सारे लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है बावेश तारम करके आरोपी है, उनका जो ऊपर लेयर है लेयर 2 है उसका नाम है प्रभाकर राय है। लेयर 3 और भी लोग हैं, उसमें 5 आरोपी हैं। इन आरोपी के खिलाफ क्या है, 11 राज्य में 17 केस रजिस्टर्ड है और ये लोग जो म्यूल अकाउंट्स खोले हैं, ये म्यूल अकाउंट्स में लगभग 1.70 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। बहुत सारा साइबर फ्रॉड्स, इंटरनेशनल नेशनल फ्रॉड्स ये लोग कमिट करते हैं।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में एक नए ऐप रेल वन का शुभारंभ किया। ये ऐप रेलवे के साथ यात्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश के सांसदों और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सरगुजा जिले के मैनपाट में 7 जुलाई से शुरू होगा। और महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने एक ट्रक से 500 किलो गांजा जब्त किया है। इसका मूल्य करीब 75,00,000 रुपए बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कर चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को मनमाफिक रिपोर्ट देने के आरोप में सीबीआई ने 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 11 राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लोगों को कोंडागांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। और भारी बारिश से राज्य के कुछ जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। बलरामपुर जिले में बीते 2 दिनों में नदी में बहने से 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।